Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, संसार का हर एक कलाकार अपनी कला पे अपना नाम जरूर अंकित करना चाहता है, लेकिन माँ ही एक ऐसी कलाकार होती है जो बच्चे को पूरी तरह गढ़ती तो है अपने गर्भ में, लेकिन नाम पिता का दे देती है। ऐसा सुंदर कलाकार संसार में और कोई दूसरा नहीं है जो अपनी कला का नाम किसी और को दे दे। इसीलिए महावीर स्वामी जी से जब किसी ने पूछा था कि प्रेम अंधा क्यों होता है, तो उन्होंने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया था कि प्रेम इसलिए अंधा होता है क्योंकि जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें देखा भी नहीं था, तब से उसने तुमसे प्रेम करना शुरू कर दिया था। तो जब संतान गर्भ में ही होती है, तब से एक सुंदर सा संबंध बच्चे के साथ माँ का बन ही जाता है और वो संबंध आजीवन बना रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय यही होता है जब बच्चा 9 मास माँ के गर्भ में होता है, माँ के ऊपर होता है। प्रथम गुरु शायद, मुझे लगता है इसीलिए कहा गया है, क्योंकि वहीं से बच्चा सीखना शुरू करता है माँ उसे कैसा स्वरूप देना चाहती है, कैसे उसके विचार हों, कैसे उसके बोल हों, कैसे उसके संस्कार हों। शायद ये बीजारोपण का समय होता है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय हो जाता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इसीलिए आइए आज पुनः उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे भ्राता जी के साथ, जो चर्चा हमने कल छोड़ी थी। पहले अभिनंदन करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक बड़ी सी बात है भ्राता जी, यदि गहराई से विचार करें, कल भी जब स्टूडियो से हमारी बात हुई उसके बाद मैं गया, तो मुझे विचार चल रहा था कि बीज बोना, जैसे बीज बो दिए जाते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, वैसा ही वृक्ष सामने आता है। और शायद ये जब बच्चा गर्भ में है तो वो बीज बोने का समय है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण समय हो जाता है। क्या कहेंगे इसमें?
हाँ, बिल्कुल सत्य है। और मैं कल की बात को आगे बढ़ाऊं तो माँ को दो चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा
जी।
एक, उसके पुण्य कर्म पुण्य आत्मा को अट्रैक्ट करेंगे। ये बड़ी सूक्ष्म गति है कि गर्भ में कौन सी आत्मा आ रही है। आने वाली आत्मा और रिसीव करने वाली माँ, दोनों के वाइब्रेशन समान हों, ये बहुत ही गुह्य बात है। तो जितने पुण्य कर्म होंगे, जितने सुंदर विचार होंगे, वैसी अच्छी आत्मा को वो अट्रैक्ट करेंगे। और दूसरी चीज, माँ का स्वभाव संस्कार। देखिए, वो उस टाइम तो नहीं है केवल, वो तो पहले से ही बनता आ रहा है। तो हर एक नारी को ये सोचना चाहिए कि वो अपने स्वभाव संस्कार को बहुत स्वीट, बहुत मृदु, ईगो लेस बनाए। इससे जीवन भर सुख मिलेगा, आने वाली संतान बहुत अच्छी होगी। इन दो चीजों पर विशेष ध्यान देना है।
बिल्कुल प्रति जी, जैसे कल हमारी एक विशेष बात हो रही थी कि बच्चा जब गर्भ में है तभी माँ के बहुत सारे जो भी हैं क्रियाकलाप हैं या उनका विचार आदि है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव डालता है। कई बार परिवार में एक ऐसा माहौल होता है, मान लीजिए पति का व्यवहार ठीक नहीं है या सासू माँ का व्यवहार ठीक नहीं है या घर में और माहौल ठीक नहीं है, तो नेचुरल हो जाता है कि उसका प्रभाव उस पर आएगा, माँ पे आएगा, और फिर उसका प्रभाव बच्चे पे जाएगा। मान लीजिए वातावरण ऐसा है, निगेटिव है, विपरीत है, जो हम अपने बच्चे के लिए नहीं चाहते, वहाँ क्या किया जाए?
नहीं, पहले तो परिवारों में माहौल ही सुंदर बनाना चाहिए। यही आज के समय की सबसे बड़ी खराब बात हो गई है कि संतान तो उत्पन्न हो रही हैं, पर उनको पहले से ही परिवार का माहौल सुंदर नहीं मिल रहा। किसी का पति बहुत शराबी है, गाली गलौज करने वाला है, तो किसी का सास बहू का निरंतर झगड़ा चल रहा है, कहीं किसी बच्चे से मनमुटाव चल रहा है, और कहीं पियर ससुर घर इससे उससे कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो घर का माहौल आकर्षक नहीं रहता है। और ये बात परम आवश्यक है कि जिस घर में संतान आ रही हैं, वो घर जितना सुंदर होगा, मैं कहूँगा उसको मंदिर बना दिया जाए। और ये एक दिन में तो नहीं होगा, सभी महिलाएं इस बात पे ध्यान दें। सास को पहले ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं सभी सास कोई खराबी होती हैं, कई सास अपनी बहू को इतना प्यार देती हैं, बिल्कुल एक हो जाती हैं दोनों, ये बहुत अच्छी बात होती है, फ्रेंडली होके रहना। और घर में अगर कुछ ऐसी वैसी बात होती है तो ये उस टाइम सास का काम है कि वो उसको लाइट करके घर के माहौल को आकर्षक बनाए रखे। बातों को बढ़ा देना। होता क्या है, एक व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उस पर रिएक्ट कर रहा है, तीसरा व्यक्ति भी उसमें शामिल हो गया है। तो दो चार व्यक्ति जब एक बुरी चीज में शामिल हो जाते हैं तो माहौल में निगेटिविटी आ जाती है। इसलिए माँ का, सास का ये परम कर्तव्य है कि वो हर बात को जल्दी से जल्दी समाप्त करे, और जो उसकी बहू है हो सके तो उसको इन बातों से अलग रखे, मतलब उस तक ये बात पहुंचाए नहीं, क्योंकि नारी में ये आदत है, कुछ भी हो गया सबको सुनाएंगी वो, कुछ भी खराब बात हो गई पहले जाके उसको सुनाएंगे जिसे बहुत प्यार है। उस टाइम इस बात का जरा परहेज करें तो घर का माहौल अगर सुंदर होगा तो बहुत अच्छा होगा। और इसी के लिए आवश्यक है कि घर में राजयोग मेडिटेशन भी होता रहे, अच्छी ट्यून बजती रहे, अच्छी क्लासेस चलती रहे, अच्छे सॉन्ग्स बनते रहे। जो टीवी का माहौल है आजकल, सारा दिन चैनल चल रहे, मन पर निगेटिव इफेक्ट आते जा रहे हैं कि चैनल में कुछ हम देखते हैं एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता।
जी जी, उससे निगेटिविटी आएगा उनके ऊपर। तो भ्राता जी, सारे दिन तो व्यक्ति फिर, जैसे इसीलिए मैंने कल आपसे बात की थी कि सारे दिन फिर कैसे क्या क्या करें, तो उनमें सत साहित्यों का अध्ययन हो सकता है, कुछ अच्छी चीजें जैसे पीस ऑफ माइंड चैनल ही बहुत ही शुद्ध और प्योर चैनल है, वो देख सकते हैं, या मन में जैसे आप कई बार कहते हैं भ्राता जी कुछ विशेष स्वमान की प्रैक्टिस करते रहें, वो स्वमान की प्रैक्टिस भी सारे दिन वो करते रहें, इससे उनके ऊपर एक अच्छा प्रभाव बना रहेगा।
बहुत माताओं ने अपने घरों में पीस ऑफ माइंड को ऐसा कर लिया कि इस टाइम तो ये चलेगा ही,
जी जी,
बाकी टाइम तो मैं कुछ देखना देख लेना। उससे जहाँ माताएं राज करती है ना घरों में, गृह मंत्री पावरफुल होता है, वहाँ तो वो ऐसा कर देते हैं, कोई निगेटिविटी फालतू की चीजें यहाँ नहीं होगी। और मैं तो कहता हूँ सभी माताओं को कम से कम अपने घर को मंदिर बनाने के लिए ऐसा पावरफुल होना ही
करना चाहिए। पता जी, मान लीजिए, चलिए ये तो सबकी समझ की बात है कि घर का माहौल बहुत शुद्ध हो जब ऐसी संतान उत्पत्ति की अवस्था है तो, लेकिन मान लीजिए हमेशा ऐसा नहीं हो पाता, यदि हम समाज पे अपने आसपास पे नजर डालें तो इसलिए मैंने प्रश्न किया था कि मान लीजिए माहौल थोड़ा विपरीत है तो माँ विशेष करके क्या ध्यान
रखे? नहीं, ये तो है ही, ये परिस्थिति तो हर गर्भवती महिला को फेस करनी पड़ती है। वो कितना भी करे आस पास ये वो, उसकी अपनी भी रुचि हो सकती है कुछ ऐसी बातों में जाने की, उसके विस्तार में जाने की, ऐसे सीन देखने की, लेकिन उस टाइम हर बात को वो भी अवॉइड करे, लाइटली लेके समाप्त करे, और अपना ये एक परम कर्तव्य समझे, अपनी जिम्मेदारी महसूस करे कि इस टाइम मेरा जीवन केवल अपने लिए नहीं है, आने वाली संतान के लिए है। इसलिए मैं अगर सुखी जीवन चाहती हूँ, मैं अगर चाहती हूँ मेरी भावी संतान बहुत महान हो, नाम रोशन करें, मेरा भी, फादर का भी, परिवार का भी, देश का भी, तो उस टाइम उस माँ को, उस महिला को ये समय बस बच्चे के लिए जैसे समर्पित कर देना चाहिए और ऐसी बातों को अवॉइड कर देना। सोच ले के 5-6 मास कम से कम उसके लिए एक सुंदर साधना का समय है, दिव्य होने का समय है, घर के माहौल को वो सोचे कि मुझे मंदिर बनाना है तो बहुत अच्छे अभ्यास करे, मैं इष्ट देवी हूँ, इस घर की देवी हूँ मैं। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हमारे घर में भी एक महान आत्मा आ रही है, बहुत खुशी और प्यार की फीलिंग में आ जाएं, बहुत अच्छे वाइब्रेशन उन्हें देने लगे, और कोशिश करे, और सब बातें हैं उनमें नो इंटरेस्ट, ये जस्ट रख दे नो इंटरेस्ट, और अपने माहौल को अपने कंट्रोल में करे। ये नहीं बाहर की बातें माहौल को बिगाड़ती रहें, नहीं, हम जैसा चाहें अपने घर के माहौल को बनाएंगे, क्योंकि हम मास्टर क्रिएटर हैं, हम मास्टर रचयिता हैं, हम जिम्मेदार हैं अपने चारों ओर के माहौल को गढ़ने के लिए। तो ऐसा एक सुंदर अपने को लेसन दे दें कि ये मेरा सुंदर समय है, ऐसा समय रोज थोड़ा ही आता है, अब ये 4-5 मास में इस तरह सुंदर स्थिति में बिताऊंगी।
बिल्कुल दादा जी, एक बात आपने कही थी वो मेरे मन में एक प्रश्न के रूप में उठ रहा है, आपने कहा कि यदि पुण्य कर्म है तो महान आत्मा का आना होगा, तो हमने तो ये सुन रखा था कि भगवान किसी आत्मा को हम तक भेजते हैं, वो जैसी भी है, तो क्या हम भी किसी विशेष या महान आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, या फिर ये बना बनाया है परमात्मा किसी को भेजते हैं, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना।
ये बहुत ही एक डीप फिलोसोफी है, इसको समझना भी बड़ा सूक्ष्म है। एक्चुअली भगवान का ये कार्य तो कभी कभी चलता है, जब उसको इस संसार के लिए किसी विशेष आत्मा को किसी विशेष घर में भेजना होता है, अन्यथा बाकी सब समय ये ऑटोमेटिक चलता है कर्म फिलोसोफी के आधार से। देखिए ऐसा है, कर्म जो है वो मनुष्य के संकल्पों में, उसके संस्कारों से प्रतिभासित होते हैं ना, और ये सब चीज़ें वाइब्रेट आउट होती हैं, ये फैलती रहती हैं, इनके वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। अब एक माँ और बाप के जैसे कर्म हैं, उस तरह के वाइब्रेशंस उनके चारों ओर हैं। अभी एक आत्मा नई इनके घर में आने वाली है, तो आने से पहले ही, ये नहीं जन्म के समय, जन्म से 4-5 मास पहले से ही वो आत्मा इन आत्माओं से थ्रू वाइब्रेशंस जुड़ी रहती है। दोनों में समानता होती है वाइब्रेशंस की, और वो अट्रैक्ट होती रहती है। और जैसे वो शरीर छोड़ेगी, ऐसा नहीं भगवान उसको डायरेक्ट करेगा तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वहां जाना है, ऑटोमेटिकली वो आकर्षित होके उसके गर्भ में प्रवेश कर लेगी। तो ये बड़ी सूक्ष्म एक फिलोसोफी है, इसको वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ज्ञान बहुत अच्छी तरह से लिया है और लंबे समय की साधनाएं की हैं। पर इसलिए मैंने कहा कि माँ बाप को बहुत अच्छे कर्म रखने चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए, तो वो एक अच्छी आत्मा का आह्वान कर सकेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल प्रति जी, एक चीज और आजकल बहुत देखने में आ रही है कि बच्चे गर्भ से ही या जैसे पैदा होते हैं तो बहुत सारी तकलीफों के साथ आजकल आने लगे हैं। किसी के हार्ट में होल है, किसी को और कोई तकलीफ है, किसी को डायबिटीज है, आदि आदि तकलीफें अब देखने में आ रही हैं। तो बच्चा हमारा पूरी तरह से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से भी, क्या कुछ विशेष अभ्यास माँ कर सकती है?
देखने में आ रही है कि बच्चा जन्म लिया और 2-4 मास के बाद ही पता चला ही इज डायबिटिक। अभी लोग सोचते हुए जन्म से बच्चा, अभी तो मीठा खाया भी नहीं, अभी डायबिटीज कहाँ से इसको हो गई। और भी एक सिविल सर्जन एक हॉस्पिटल की, बेंगलोर की, हमारे यहाँ ज्ञान योग करने आती है, उसने मुझे कहा 5 साल की बच्ची को कैंसर। हम सब डॉक्टर्स आपस में बैठे विचार करने लगे कि ये कैसे हो रहा है। तो मैंने उसको बताया कि ये कैसे हो रहा है, मेडिकल साइंस आदि के पास इनके उत्तर नहीं है, इसके पीछे कर्म फिलोसोफी है। देखिए, एक मनुष्य ने कैंसर की स्थिति में शरीर छोड़ दिया, अभी उसके सूक्ष्म शरीर में भी कैंसर का संपूर्ण इफेक्ट था, अब वो सूक्ष्म शरीर सहित दूसरे गर्भ में उसने प्रवेश किया। अभी जैसे ही जन्म हुआ तो उसमें कैंसर के वो सूक्ष्म लक्षण होंगे ही, लेकिन कोई इस बात पे ध्यान नहीं देगा, कुछ उसको बीमारी हुई, कुछ कारण बना तो चेकअप होगा और ये कैंसर है, तो 5 साल की बच्ची को, 7 साल के बच्चे को, तो ये कर्मों की गुह्य गति पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं क्योंकि पुनर्जन्म ले रहे, हम देख रहे हैं किसी की डायबिटीज से किसी का अंत हुआ है, किसी का कैंसर से अंत हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है बहुत सीवियर, उससे उसका अंत हुआ है। तो ये सब सूक्ष्म शरीर में वो आत्माएं साथ ले आती हैं और उसका इफेक्ट पूरा स्थूल शरीर पर आता है। किसी का 10 साल में बाहर आ जाता है, इमर्ज होता है, किसी का 20 साल में इमर्ज हो जाता है। इसलिए आजकल छोटे बच्चों को और यंग लोगों को भी हार्ट अटैक और ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो 60 साल के बाद हुआ करती थी। तो मनुष्य इस तरह के कर्म लेकर आ रहा है, इस तरह की बीमारियों का जंजाल लेकर गर्भ में आत्मा आती है। अभी ऐसी आत्मा आ भी जाए, ये और एक डीप फिलोसोफी हो जाएगी। मान लो एक कैंसर से शरीर छोड़ने वाली आत्मा ने एक महिला के गर्भ में प्रवेश किया है, अब उसके सूक्ष्म शरीर में उसके वायरस या जो भी मेडिकल साइंस नाम देगी, वो उसके सूक्ष्म शरीर में भी बड़े सूक्ष्म रूप से साथ आ गए हैं। अब ये माँ एक तो चार्ज करके पानी पिए, दूध जो भी इसको पीना, भोजन को भी ये चार्ज करे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और संकल्प करे मेरी अब ये संतान संपूर्ण स्वस्थ पैदा हो, ये बहुत हेल्दी बच्चा हो, हर तरह से हृष्ट-पुष्ट हो, बुद्धि से भी, शरीर से भी, मन से भी, विचारों से भी, बिल्कुल वो हेल्दी रहे, एक तो ये काम वो करे। और मेडिटेशन सभी महिलाओं को सिखाई देना चाहिए कि भगवान के वाइब्रेशन समय आ रहे हैं और हमसे पूरे शरीर में फैल रहे हैं और उस बच्चे को भी जा रहे हैं, संकल्प कर ले इनसे वो बच्चा पूर्ण हेल्दी हो जाए, चरित्रवान हो जाए। ऐसी कुछ प्रैक्टिस अगर माताएं करती रहें तो इस परिस्थिति से बचा जा सकता है।
बिल्कुल, तो उसका जो शरीर में मतलब किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो वो दूर हो जाएगा और संपूर्ण रूप से जैसे ग्रोथ होना चाहिए वैसे ग्रोथ हो पाएगा। प्रति जी, वैसे तो ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ये इच्छा रहती है कि मान लीजिए मेरी 2 लड़कियां 3 लड़कियां हो गई, अब मुझे एक लड़के की आवश्यकता है, अब वो लड़का हो, अब जो गर्भपात वाली जो स्थिति आती है या भ्रूण हत्या वाली जो बात आती है वो शायद यहीं पे आ जाती है कि भाई अब तीन के बाद चौथा पांचवा भी यदि लड़की है तो ये करा दिया जाता है। खैर ईश्वर हमें जो दे हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि जब गर्भवती है महिला तो जब वो ये अभ्यास करे, यदि उसे लड़की की आवश्यकता है या लड़के की आवश्यकता है, तो क्या कुछ ऐसा योग किया जा सकता है जो जिससे कि ये स्थिति ना आए कि हमें फिर ये वाली जो अवस्था आती है कि हाँ भाई हमें लिंग चेक करवाना है और फिर यदि लड़की है तो वो हटा देना है, तो ये वाली स्थिति ना आए।
देखिए बात तो बहुत बड़ी है। अब ये तो उनका आह्वान करने वाली जो माँ है या फादर है उसकी मनोस्थिति पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि लोग भी संसार में इसको प्रभु देह नहीं मानते हैं या अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब से ये सब चीजें होती हैं। फिर भी कोई चाहे तो इसका एक्सपेरिमेंट करके देख ले, लेकिन इसमें वहाँ किसी ना किसी को बहुत पावरफुल योग करना पड़ेगा 3 मास के लिए, और एक आत्मा का आह्वान करेंगे जो पुरुष रूप में उनके गर्भ से उत्पन्न हो, ऐसा करके देखा जाए। बाकी है तो ये चीज कर्मों पर आधारित।
बिल्कुल, विशेष करके बताता जी, अब चलिए क्योंकि एक विशेष बात पे ही हमारी चर्चा हो रही है, तो क्या विशेष संदेश पूरी ही मातृशक्ति को आप देना चाहेंगे जो कि जननी है और एक नई संतान को इस सृष्टि पे लाती है?
बिल्कुल, जननी तो पूजनीय है। बहुत अच्छी बात रहेगी कि हमारी सभी माताएं बहनें अपने को जिम्मेदार समझें कि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं है, जिसको वो जॉब करते हुए धन कमाते हुए या थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े में थोड़े बहुत संघर्षों में व्यतीत कर दें, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संसार को महान आत्माएं देना, संसार को महान व्यक्ति देना, शक्तिशाली व्यक्ति देना जो संसार की दिशा और दशा को बदल दें। इसलिए कुछ महिलाएं ऐसी हो जाएं जो राजयोगी बनकर ऐसा अच्छा महान कार्य करें, अपने घर को तीर्थ बनाएं, मंदिर बनाएं और आने वाली संतान महान हो जाए।
प्रताप जी चलिए, सुंदर संदेश आपने दिया है, कुछ मैसेज आए हैं और मैसेज की ओर अब मैं आपको लिए चलता हूँ। ये वेस्ट बंगाल से हमारे पास आया है प्रताप जी पहला मैसेज, और ये कहती हैं कि 4 वर्ष हो गए हैं विद्यालय से जुड़े हुए, मेरे मम्मी पापा भी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है अपनी माँ से और पिताजी से, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है, नेगेटिव मन में विचार आते हैं कि मम्मी को कुछ ऐसा ना हो जाए ऐसा ना हो जाए, और ये सोच सोच के मैं परेशान हो जाती हूँ, और आप हमेशा कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, तो ये बात मुझे और परेशान कर देती है, कृपया बताएं कि ऐसे मुझे क्या करना चाहिए।
जब इनको ज्ञान है कि जैसा सोचोगे वैसा क्रिएट हम करेंगे तो इसको परेशान होने की बजाय अपनी थिंकिंग को चेंज करना चाहिए।
लेकिन कई बार ऐसा होता है जी, कोई विचार आ गया तो वो हावी हो जाता है कि कहीं ऐसा हो ना जाए, उसे निकल नहीं पाते हैं।
इन पे ऐसा ही हो रहा है कि वो विचार इनके अंदर हावी हो गया है, हो सकता है पूर्व जन्मों की किसी घटना का गहरा इफेक्ट इनके सबकॉन्शियस माइंड पे छाया हो और उसके कारण उसको लगता हो मेरी माँ को कुछ ना हो जाए। जैसे पूर्व जन्मों में क्या होता है कि किसी बच्चे की माँ बचपन में छीन ली गई, किसी बच्चे की माँ का बचपन में एक्सीडेंट से मौत हो गई, किसी के साथ और बुरी घटना हो गई, किसी बच्चे की माँ, वो देख रहा है बच्चा उसकी माँ को बहुत मारा पीटा जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है, उसकी दुर्दशा हो रही है, तो उसके मन में ये समा जाता है और वो अब भी सोच रही है कि मेरी माँ को कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। अब इसको अपने विचारों को चेंज करना है, विशेष रूप से मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरी माँ अब परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित है, उसका भविष्य बहुत सुंदर है, उसके साथ जो कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा, ये संकल्प वो सवेरे उठते ही 7 दिन तक अगर पक्का करेंगी तो उस संकल्प का इफेक्ट खत्म होने लगेगा जो संकल्प इन पर हावी हो गया है, और फिर ये धीरे धीरे ध्यान जब वो संकल्प आए उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में बदले, और बहुत जल्दी अगर ये 21 दिन ऐसा अभ्यास कर लेते हैं तो 21 दिन एक सुंदर समय होता है, इसमें वो निगेटिविटी इनकी समाप्त हो जाएगी और अच्छे संकल्प ये करने लगेंगे।
बिल्कुल, मतलब एक अभ्यास करने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो इसे बाहर निकल आएंगे। प्रताप जी हैदराबाद से सुनीता जी का है, ये कहती हैं कि मुझे कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं होती, अपने पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी शरीर भी मेरा हमेशा ही अस्वस्थ रहता है, तो मैं क्या विशेष करके इसके लिए अभ्यास करूं, क्योंकि बचपन से कहती हैं कि जब से मैं बड़ी हुई हूं तब से सफलता का मुंह ही मैंने नहीं देखा है, तो निराश हो चुकी हैं हर प्रकार से।
बिल्कुल, बहुत ही ऐसी बात है कि जिस मनुष्य के साथ ऐसा होगा उसको तो लगेगा कि शायद मेरे भाग्य में ही सफलता नहीं है, अब मैं क्या करूं, मेरे को भी ऐसे फोन कॉल एक दो दिन से आ रहे हैं, दो तीन बहनों के ही, कि उनका ये नहीं हो रहा, उनका ये नहीं हो रहा, जैसे सफलता उनकी तकदीर में ही नहीं है। मैंने कहा तो ठीक है, अब आपको 10 साल का ये अनुभव हो गया, लेकिन स्टिल आप अपने को निराशा में न ले जाओ, निगेटिव न करो। जीवन में कभी बुरे दिन भी होते हैं और वो बीत जाते हैं, आपका ये बुरा समय भी बीत जाएगा, थोड़ी सी साधना करो। इस बात के कारण आज जो एक फोन मेरे पास आया कि 3 मास से वो ज्ञान मार्ग पे आ गई हैं, आपकी असफलता आपको भगवान से मिलाने जा रही है, तो धन्यवाद दो अपनी असफलता को। ऐसा कैसे हो जाएगा? मैंने कहा जरा आगे तो बढ़ो, ज्ञान योग लो, सीखो, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करो और देखो कि तुम्हारी असफलता तुम्हारे लिए कैसे एक बहुत सुंदर ब्लेसिंग बन गई है, ईश्वरीय मार्ग पे आ गई। जो हम चर्चा कर रहे थे कभी के, हरे कल्याण के पीछे कल्याण छुपा रहता है। तो ज्ञान में आना, राजयोग करना, माना रोज सवेरे प्रभु मिलन होने ही लगेगा। बाकी ये थोड़ा सा अभ्यास कर लें। देखिए ये कुछ बुरे कर्मों का इफेक्ट है इनके इस जीवन पर। जैसे नहीं किसी को कोई महापुरुष श्रापित कर दे, जैसे हनुमान के लिए दिखाया ना, उसको अहंकार था बल का, सन्यासी ने उसको श्रापित कर दिया था, भूल जाओ ये सब तुम कुछ। तो ऐसा कभी कभी होता है, हम बड़ों की बद्दुआएं ले लेते हैं तो उनसे हमें ऐसी बैड बातें मिल जाती हैं। तो इनको अब एक तो पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाना है, अब ये संकल्प करें मुझे कदम कदम पर मन वचन कर्म से पुण्य करने हैं, और एक 3 मास की ये योग भट्टी कर ली, 21 दिन की 3 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, सफलता मेरा जन्म से अधिकार है। ये स्वमान उठते ही 7 बार याद करें विद गुड फीलिंग। फिर दिन में कोई भी एक टाइम निश्चित करके इन्हें याद करके 1 घंटा अच्छी तरह योग करें। तो ऐसा ये 21 दिन पहले करें, विघ्न हटेंगे, जो बचे कुचे होंगे दूसरे 21 दिन में हट जाएंगे। और फिर ये अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान का वरदानी हाथ, दुआओं से भरा हुआ हाथ मेरे सिर पर है। फिर 21 दिन योग अभ्यास करें तो ये जो काली छाया है इसके जीवन पर, ये निश्चित रूप से हट जाएगा।
चलिए भ्राता जी, आज के सुंदर प्रकाश के लिए, क्योंकि व्यक्ति बार बार असफल होता है तो सचमुच बहुत निराश हो जाता है, उसे लगता है कि पता नहीं मेरे जीवन का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। आज आपने एक आशा की किरण जगाई है सुनीता जी के भी मन में, और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असफल होते रहते हैं, वो सब भी इसका अभ्यास करके सफलता अर्जित करें। हमारी कामना रहेगी उनके लिए कि वो सफल अवश्य हो। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हमारी ढेर सारी शुभकामना है आपके लिए कि आप जीवन में हमेशा सफलता अर्जित करें। मान लीजिए किसी कारण से असफलता हो भी रही है तो कोई बात नहीं, भ्राता जी ने बहुत सुंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताए हैं, 21 डेज का अभ्यास लगातार भ्राता जी करने को कहते हैं, और बहुत सारे अनुभव हमारे पास आते रहते हैं कि कैसे उन्होंने ये योग का अभ्यास किया और सफलता अर्जित की। आप भी इसका जरूर उपयोग कीजिएगा और आप पाएंगे कि जीवन में जो भी निराशा है, असफलता का दौर चल रहा है, वो सारे दूर हो जाएंगे। और साथ ही जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, आज मातृशक्ति की विशेष चर्चा हो रही थी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय पे हम अपने ऊपर ध्यान दें और साथ ही आने वाली संतति के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए किसी ने कहा है, माँ की महानता को प्रदर्शित करने वाली एक बात है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। इतनी बड़ी उपाधि, इतनी बड़ी गरिमा इसीलिए उसे दी गई है क्योंकि वो जननी है, वो रचती है। तो जब कभी एक ऐसी अवस्था में आप हैं जबकि संतान उत्पत्ति की अवस्था है, निश्चित रूप से अपने मन में बहुत सुंदर विचारों को रखें, महान विचारों को रखें, ताकि आने वाली भी जो संतान है बहुत महान पैदा हो। जीजा माता ही तो थीं जिन्होंने शिवाजी महाराज को तैयार किया था, या पुतली बाई थीं जिन्होंने महात्मा गांधी जी को तैयार किया था। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने माँ से ही तो जन्म लिया है, और उनकी माँ ने भी विशेष करके ऐसी ही चीज उनके अंदर बोए होंगे ना कि बचपन से ही वो ऐसे प्रखर थे, मेधावी थे। आप भी ऐसी संतानों को जन्म दें ताकि हमारा देश और सारा संसार प्रकाशित हो, संसार स्वर्ग बन जाए। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।